नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय श्लोक संख्या 24 तक हुआ था, आज 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 श्लोक संख्या 32 लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसका पुनरावृत्ति करेंगे। भागवतम 8वां स्कंध अध्याय 19, बलि महाराज से मामंदिर द्वारा दान की याचना। ते स्थानम् ऐश्वर्यम् श्रियम् तेजः यशः श्रुतम् दास्यति आइच्छद्धा सत्राय माया मानवकः हरिः। एषा ते स्थानमैश्वर्यम् श्रियम् तेजो यशः श्रुतम् दास्यते छद्मसत्राय दास्यति आच्छद्मसत्राय माया मानवको हरे। एष ते अस्थानमैश्वर्यम् श्रियम् तेजो यशः श्रुतम् दास्यति आयुच्छद् शुक्राय दास्यति छद् शुक्राय माया मानवको हरे। एष ते अस्थानमैश्वर्यम् श्रियम् तेजो यशः श्रुतम् दास्यति आदिच्छद्मसत्राय माया मानवको हरे। Yeah. ऐसा यह व्यक्ति वो देखने में ब्रह्मचारी बन रहा है, ते तुम्हारी स्थान अधिकृत हुई ऐश्वर्यम धन्यधान श्रेयम भौतिक सौंदर्य तेज भौतिक शक्ति यश कृति ख्याति श्रुतम शिक्षा दास्यति देगा तुमसे लेकर फकराया तुम्हारे शत्रु इंद्र को माया नकली मावक मनुष्य का ब्रह्मचारी पुत्र हरि वास्तव में भगवान हरि है। अनुवाद की यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि संपत्ति सौंदर्य शक्ति जस तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीन कर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया है कि हरि शब्द छीन लेने वाले का द्योतक है। यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो वे उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान उसकी सारी संपत्ति कृति विद्या का सौंदर्य का हरण कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 10:88 में कहा गया है, यस्याहम अनुग्रामी हरि से तद्धनम शनै। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, मैं अपने भक्त पर पहला अनुग्रह करता हूँ वह यह है कि मैं उसका सब कुछ विशेष कर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन हर लेता हूँ। निष्ठावान भक्त के प्रति भगवान का यह विशेष अनुग्रह होता है। यदि निष्ठावान भक्त कृष्ण के प्रति सर्वोपरि चाहत होती है, किंतु यदि वह भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है और उसका धन कृष्ण भक्ति के प्रति में बाधक बनता है तो भगवान युक्ति से उसका सारा धन हर लेते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि यह वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का सारा धन और उसका मन भी छीन लेंगे। यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है स्वयं कृष्ण प्रारंभ हो तो वह सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति अनुरक्त थे, अतएव भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति एवं उनके मन को भी उनसे छीन लिया। ओम ज्ञान कुमिरांगस्य ज्ञानांजनसलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शेते यदम सुपुरुषम भुक्ते गुणान षोडशोडशात्मकम् शूलम् शिष्यम् भगवन्दशांसि गुरवे गौरचन्द्राय बाधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धवेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भावराधिकामाधुरी अस्वादय सुखराय जयति कृष्ण चैतन्य कलिप्रकटे ब्रजराय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्लोक संख्या 24 से 24 में तो बताया गया कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है उसे क्या प्राप्त होता है और जो असंतोषी होता है उसे क्या प्राप्त होता है। संतोषी का मतलब क्या होता है, संतुष्ट किसे कहते हैं, इसका परिभाषा इन श्लोकों में बताया गया है। जैसे 24 लिखा गया है, उत्पन्न भगवत कृपा से अनायास ही जो कुछ प्राप्त हो जाता है उससे वो संतोष रहता संतोषी रहता है। संतोषी मतलब भगवत कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसको हम सर्वस्व मानना, जो ऐसे मानकर जीवन यापन करता है और वास्तव में यही सत्य है। हम लोगों को भगवान भी इतना ही देते हैं जितना जरूरी है, ज्यादा होना खराबी करता है। हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर में भगवान एक यंत्र रखे हैं जिसका नाम है ढाका, ढाका यंत्र हनुमान। जब खाते हैं तो ढाका रहता है और याद करना दो ढाका रहता है, एक ढाका रहता है मतलब बंद कर दो, जो बचा खुचा है तो खत्म कर दो, और दूसरा ढाका मतलब फुल स्टॉप नो नो खत्म। तो भगवान व्यवस्था के जो संतोषी व्यक्ति है ढकारा बंद करता है तो स्वस्थ रहता है, और जो असंतोषी है पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं यहां पर खा लेता है, वो पता नहीं जब ढकार आया कि नहीं आया तो बीमारी नहीं हो तो क्या होगी। अच्छा, ये संतोष असंतोष के मन का दिया हुआ चीज है। उदाहरण देता हूं, कोई अच्छा फिश हो नगार आ गया है फिर मन करेगा था और खा लेते हैं, अच्छा चीज बना हुआ है खा लेते हैं, जब पेट में गड़बड़ी होता है तो वही बदमाश मन करता है इतना नहीं खाना चाहिए, पहले उसने ही जान था खा लेते हैं, तकलीफ हुआ रहेंगे हमेशा दुखी रहेंगे। तो यह वृक्षया उपन्नेना संतुष्ट, जो कुछ भगवत कृपा से यदृक्षा तो भगवत कृपा कुछ होते हैं कर्मों के अनुसार। जैसे भी अनसीन फोर्सेस जिसको हम देखे नहीं, क्यों आ गया, कैसे आया, उसको माथा पीछे मत करो, आ गया है। और उसी से जो संतुष्ट रहते हैं वे लोग क्या होते हैं, वर्तते सुखम, वो सब परिस्थितियों में सुखी रहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो असंतोषी व्यक्ति है उसको सर्वस्व दे दिया जाए। बलि महाराज तो एक दीप का बात कर रहे हैं, ब्राह्मण देव कहते हैं एक ही दीप की बात कर रहे हैं, तीनों लोग का राज दे दिया जाए तो भी तो कहेगा थोड़ा कम ही है और मेरा अच्छा होता है, इतना से काम नहीं चलेगा। जो है उसके लिए सुखी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए वह दुखी है। ये असंतोषी व्यक्ति का, तो संतोषी व्यक्ति जो होता है वो सुखी होता है। अयम संतोषातम परम सुखम, जो संतोषी है वो परम सुखी है। ऐसा ही कुछ बात आए के श्लोकों में कहा गया है। श्लोक 25 में यह वृक्षया संतोष श्रद्धांग स्कंदन आगे बात करो। श्लोक संख्या 25, पुरुषोयम संस्थिते हेतु असंतोषो अर्थकामयो यदृक्षोपन्नेन उपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। यहाँ पर पुंसम शब्द कहा गया है, पुंसो अयम, इस भौतिक संसार में पुंसम मतलब पुरुष मनुष्य असंतोष जो होता है ये हम ही लोगों में होता है। अन्य जितने भी प्राणी असंतोषी हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था कि एक रूम है उसमें चना भरा हुआ है, उसमें कबूतर छोड़ दो, चिड़िया छोड़ दो, चिड़िया भर के खाएगा और बाद में निकल चला जाएगा। लेकिन हनुमान जी ये दो पैर वाले चिड़िया इतने खतरनाक हैं कि भर पेट खाएंगे तो 4-5 किलो लाद कर ले भी जाएंगे। असंतोष इसमें है हम लोगों में, इसलिए शुरू करते हैं। पुरुषा अयम संस्ते ही तो ये जो असंतोष है हम लोगों में ज्यादा विद्यमान है, अरे हम लोगों में ही है। लेकिन जो जीव है वह जन्म के चक्र में पड़ता है, क्यों, कारण क्या है, असंतोष। और जिसको संतोष है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो बाला श्लोक में बताया गया भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसे यह संतोष जिसको रहता है वह व्यक्ति सुखी रहता है। सुख का कारण है संतोष। अभी कुछ दिन पहले, आजकल तो नया नया फेस्टिवल मनाते हैं ना, तो कुछ दिन पहले एक नया फेस्टिवल मनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। सुना बोलूं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, आर्टिफिशियल रूप से कैसे सबको उसमें खुश रहना, सबको अपना प्रतिष्ठान दिखाना है, भले घर में झगड़ा हुआ कुछ दिन कम से कम नहीं होना चाहिए, कुछ दिन शांति चाहिए थी, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो किसी ने एक बड़ा सुंदर मैसेज दिया है, चूंकि प्रसंग चल रहा है सुख का बात, संतोष से सुख होता है, पहले का जो श्लोक है उसी पर है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा विज्ञानी 1922 की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक बार वो जापान का टूर कर रहे थे, तो एक होटल में ठहरे हुए थे। होटल का जो वेटर था कुछ मंगाए थे और लाया था, उनके पास उस वेटर को देने टिप देने के लिए पैसा नहीं था। फाइव स्टार होटल होगा उसमें नोट भुगता पेन था, तो उन्होंने एक वस्तु लिखा, कुछ लिखा और लिख करके उस वेटर को उन्होंने दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा हुआ जो बात था, अब कुछ दिन पहले उसका नीलामी हुआ था, 9 करोड़ रुपया में बेचा गया। कितना में? $1.5 million में उसका सौदा किया गया, नीलामी किया गया। क्या अल्बर्ट ने लिखा था? ए काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन ए कॉन्स्टेंट परसूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विथ कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस। इतना ही लिखा था। लिखा था कि ए काम एंड मॉडेस्ट लाइफ, शांतिमय जीवन जो है वह सुख को प्राप्त कराता है। बात सही है, अशांतस्य कुतः सुखं, वो अशांत है सुखी कैसे हो सकता है? जो शांति को प्राप्त किया है वही सुख को प्राप्त करता है। फिर होता है कि जो लोग जीवन के सुख के पीछे पागलपन है में पड़े हुए हैं, और जो समझते हैं कि सफलता से सुख मिलेगी और उसके चलते वो अशांत पड़े हुए हैं, रिस्कलेस हैं, लोग सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन अपने जमाने के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो कि उन्होंने परफेक्ट माइंड एंड पीसफुल लाइफ इन की ऑफ हैप्पीनेस उन्होंने लिखा, इसका 9 करोड़ दान हुआ। और इसे अच्छा चीज भगवान गीताएं बोले हैं, इसका 100 रुपया भी दान है। तो समझते नहीं भगवान यही बात बोले हैं, विहाय कामान सर्वान् तुमां शरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारं सहमे शांति अधिगच्छति। शांति कौन प्राप्त करता है? विहाय कामान सर्वान्, जो इंद्रिय तृप्ति के आशा को छोड़ दिया है। अब मेरे सिर पर क्यों खड़े हैं ये बैठिए, विहाय कामान सर्वान्, वो समस्त प्रकार के कामनाओं को त्याग चुका है, छोड़ दिया है। विहाय कामान पुनः शक्ति निस्प्रिया मतलब संतुष्टि, जो स्प्रिया नहीं है कि मिल जाए भी मिल जाए भी मिल जाए और वो संतोषी नहीं, वो संतोषी है। मां शर्ति निर्ममो निरहंकार, किसी ममता नहीं है और जो है उसके लिए अहंकार नहीं है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा, वही सुख प्राप्त करेगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने गीता का इनडायरेक्ट रूप से अब इसराइल ने कोट किया। But look at how the world thinks about heaven's today। देखा जाए तो आज लोग सुख के विषय में क्या सोचते हैं, कैसे सुख मिलेगा, कैसे सुगंधा। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क में, सब जगह एक ही बात को कहा जाता है, इसे प्राप्त करो। देखिए सेल्फ, वर्क हार्ड देन यू बी हैप्पी, ये सिखाया जाता है बचपन से। सोचिए कि संसार में हम लोगों को कोई अच्छा चीज प्राप्त करने की इच्छा है, एक घड़ी लेने की इच्छा है, जो बहुत मार्केट में नया नया आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि बहुत लोग वैसा घड़ी पहने हैं, अंकल हो रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ता है, मेरे बदले सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसमें कैलोरी कितना जलाया, हार्ट बीट कितना है, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, सब कुछ सब जानते हैं। तो कोई सोचे कि वाह बड़ा अच्छा लगता है देखने में, और व्यक्ति जो घड़ी पहना है बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या वो घड़ी प्राप्त करना हम लोगों को सुखी कर सकता है? तो सुखी क्या करेगा? घड़ी का इच्छा न होना। घड़ी प्राप्त करना हमको सुखी नहीं करेगा, लेकिन घड़ी का इच्छा न होना हमको सुखी करेगा। तो इच्छा स्पृहा दुख का कारण, निष्प्रिय हो जाएंगे हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को इसके पीछे नहीं दौड़, स्पृहा के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि भगवान जो दिए हैं उससे संतुष्ट रहें। प्रायः हम देखते हैं कि हमारे पास जो है उससे हम सुखी नहीं है, लेकिन जो दूसरे के पास है उससे हम लोग दुखी जरूर हैं। वो है स्पृहा, हमारे पास उसके पास क्यों हो गया, जो अपने पास है ये तो लड़कपना है, बचपना है, ये छोटे बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं, छोटे बच्चे जिद करते हैं, उसके पास क्यों, भाई के पास क्यों, मेरे पास क्यों, मेरे बहन के पास क्यों, मेरे पास क्यों। वास्तव में जिसकी बुद्धि कम है वे लोग इस प्रकार का विचार करते हैं। जो बामन भगवान जैसे लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो ज्ञान को जानते हैं, वे समझते हैं कि असंतोष स्पृहा किसी प्रकार से हमको सुखी नहीं कर सकता है, स्पृहा से हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि असंतोष उत्पन्न कैसे होता है? भगवान अपने आप में संतुष्ट है, आत्मनैव आत्मसंतुष्टो, भगवान अपने में संतुष्ट है और हम भी अपने में संतुष्ट हो सकते हैं। यदि अंदर इनवर्ड हुआ जाए तो संतोष हो सकता है, आउटवर्ड होने से ही हम असंतुष्ट, अपने पास जो है उसको देख करके रहेंगे तो हम संतुष्टी रहेंगे, लेकिन उसके पास क्या है वह देखते रहेंगे तो असंतुष्ट रहेंगे या दुखी रहेंगे। लाभ से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से असंतोष उत्पन्न होता है, और असंतोष जो है वह पाप का कारण है। असंतोष से ही व्यक्ति पाप करता है, तो सब कुछ भगवान ने दिया, तो करना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। और जितने बदमाश असंतोषी लोग हैं उनको कहो हरे कृष्ण जपन जय महाराज मर रहे समय नहीं, क्योंकि वो कंटेन नहीं है, पूरे लोग है। एक बार एक नौजवान लड़का काशी से पढ़ करके आया, उसका शादी विवाह हुआ था। शादी विवाह के दिन प्रथम रात्रि जब अपने पत्नी से मिला तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप हमारे एक प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए, आप काशी से पढ़ करके आए हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलो क्या हमारा प्रश्न है? तो पत्नी ने प्रश्न किया, ये बताइए कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? फिर पंडित जी अपना सिर खुलाने लगे, पूरा पोते देख रहे हैं कहीं दिखाई नहीं हुआ है, बड़े परेशान हो गए। तो उसने कहा कि आप मेरे पति होने के योग्य नहीं, आपको पहले इसका उत्तर प्राप्त करना पड़ेगा कि बाप का बाप कौन है, तब मैं आपको अपना पति का दर्जा दूंगी। पंडित जी चले भाग, वहां से चले गुरु जी के पास, फिर काफी जा रहे हैं, पता लगा के लिए पाप का बाप कौन है। रास्ते में एक बेस्या मिल गई, अरे पंडित जी अंदर दादी हुआ, कहाँ जा रहे हो? कहा रे मेरी पत्नी ने दो बार प्रश्न कर दिया, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो जा रहा हूँ गुरु जी से पूछना। क्या क्या प्रश्न बताइए बताइए? अरे उसने पूछा कि पाप का बाप कौन है। बस इसके लिए कैसे जाना पड़ता है, इतना बता सकती हूँ? कैसे बता सकती हूँ? कहाँ आइए मेरे घर पर आइए। घर पर लेकर गई, सब कुछ अपना परिचय बताई, वो कौन है, विषया है, कैसे करती है। पंडित जी विषया के घर पर गए, बोले कि बताओ तुम, उनका खातिर बातचीत हुआ कि बोले बताओ करके आज नहीं कल आइए बताऊंगी। और जाते समय उनको कुछ दक्षिणा दे दिया पंडित जी को, पंडित दक्षिणा लेकर चले गए। दूसरे दिन आए, पंडित जी से कुछ बात होती थी, पहले पूछने लगी कि आप बताओ क्या क्या पढ़े हो, फिल्म का उत्तर हो रहा है बताइए। पंडित जी खूब जितना धातु और विष्णु कहाँ है और क्या क्या है, हाँ सब पढ़ दिया विष्णु काशी से। पंडित जी इतना पढ़े सब बताए विषया को, अब सूर्यास्त का समय हो रहा था, तो विषया ने कहा पंडित जी एक समय तो हो गया, आज नहीं अब कल बताऊंगी। और फिर वो कुछ दक्षिणा दे दिया, पंडित जी चले गए दक्षिणा लेकर के। तीसरे दिन पंडित जी आए, थोड़ा पंडित जी देखिए आज नहीं आपको मैं कल बताऊंगी, लेकिन खिला पिला कर बताऊंगी, आप बताइए कल क्या आप खाना पसंद करेंगे, कच्चा भोजन खाएंगे या पका भोजन, समझते कच्चा भोजन किसे कहते हैं? कच्चा भोजन किसे कहते हैं? मनमोहन कृष्ण आई टी पढ़ाई नहीं होगी, दाना पढ़ना पड़ेगा, हाँ आई टी पढ़े गए थे, मैं आई आई टी पूछ रहा हूँ, चंदन फल का मन एक और बताओ आई आई टी पढ़ने गया था क्या? मैं आई आई टी पूछ रहा हूँ, तुझे बोले भी तू नहीं बताई हूँ कि गांव का साइंस बड़ा पहले साइंस बड़ा एडवांस था, गांव के लोग जुगाड़ का साइंस जानते थे, वो साइंसिस एक बार ट्रेवल कर रहे थे, एक इंडियन था एक अमेरिकन था, इंडियन ट्रेन में पंखा बंद हो गया, अमेरिकन जापानी साइंसिस से सब चालू कर रहे हैं पंखा चल ही नहीं रहा है, इंडियन व्यक्ति था एक दूसरा साइंसिस ने था, देखा बड़े परेशान है, तो उठा, पॉकेट से पेन निकाला, ऐसे करके पंखा चलने लगा। साइंस से वो परेशान गए, कैसे घर से हो गया। सीधा थे एक एक्स्ट्रा साइंस है जिसका नाम जुगाड़ साइंस, जुगाड़। गांव का साइंस जुगाड़ साइंस। हनुमान जी बताइए, कच्चा भजन किसे कहते हैं? और पक्का भोग रहा है किसी को भी, हलवा पूरी इत्यादि तला हुआ भोजन जो है पक्का भोजन है, और चावल दाल इत्यादि कच्चा भोजन। तो वैश्या ने पूछा, पंडित जी आप क्या खाओ कच्चा भोजन? जो आप खिलाओ वही खा लेंगे। और पंडित जी को हरियास्था है कि नहीं, और दक्षिणा मिल रहा था पंडित जी को, कच्चा भोजन हो क्या भोजन हो चलेगा। और तीसरे दिन पंडित जी आए, अब वैश्या उनको खाने के लिए सोचा कच्चा भोजन चावल दाल इत्यादि। जो ही पंडित जी हाथ मिलाकर मुंह में डालने का प्रयास किए, वैश्या एक झापड़ मारी जोर से पंडित जी को, गनगना गए। अभी सत्कार का तरीका है, क्या तुम कर रहे हो? कह लो, अरे आपने भी पूछा था ना कि पाप का बाप कौन है, वो तो मैं बता रही हूँ। कैसे इनमें से बताने के लिए हुआ? कहा पंडित जी, पाप का बाप है लोभस्य पापस्य कारणम। अरे आप कुलीन ब्राह्मण, मैं नीच वैश्या, आप मेरे घर आए? एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, उतना ही नहीं, भोजन के लिए भी कच्चा भोजन ग्रहण करता है। अब देख रहे हैं कितना आपका पतन हुआ है। तो कारण क्या है? वो दक्षिणा, तो दक्षिणा बर्तन जितने गए ना, वही कारण था। लो पहले 10 रुपया, दूसरे 100 रुपया, तीसरे 500, जगन्नाथ ना दक्षिणा था। लो लोभस्य पापस्य कारणम। वही बात भगवान मामा में कह रहे हैं कि असंतोष जो है वो दुख का कारण है, और संतोष जो है वो सुख का कारण है। गाड़ी का स्पीड आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज का जो 25वां श्लोक है वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु का जो कारण है वो अभी असंतोष है। जो असंतोषी व्यक्ति है वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। पुरुषोयम संस्ने हेतु असंतोषो अर्थ कामयो यदि चोपबंदी संतोषो मुक्तये सुधा। तो पहला असंतोषी व्यक्ति को पूरा विश्व दे दो तो अभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोषी व्यक्ति, असंतोष जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है, तो संतोष जो है वह मुक्ति का कारण है। श्लोक संख्या 26। दीक्षा लाभ तुष्ट के जो विपस्य वर्धते तत्व साम्यति असंतोषा अंबसा इव आशु सुक्षणी। संतोष से ब्राह्मण वैष्णव का विक्रोता या तीर जो है वह बढ़ता है। ब्राह्मणों का तीर बढ़ता है संतोष से। क्षत्रिय का बढ़ता है बल सन, और वैश्यों का बढ़ता है धन। तो संतोष सबके लिए है। तो यहां पर बताया गया है कि विप्र का तेज बढ़ता है संतोष से, लेकिन जो असंतोषी व्यक्ति है उसके लिए असंतोष पानी का काम करता है। आग के ऊपर आग पर पानी डाल देंगे तो पानी आग को बुझा डालेगा। तो तीन श्लोकों में संतोष का महिमा गाए हैं भामा भगवान।
वो भी अपने एंड मर्सी में
वो दृक्षया भगवत कृपा से, संतोष भी भगवत कृपा से ही होता है। भगवान के भक्त होते हैं वो संतोष से होते हैं। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल असान, कृष्ण भक्त निष्काम अत एवं शान। कृष्ण भक्त निष्काम होते हैं, जिनमें भक्ति होती है उनमें ही एक दैविक संपदा होती है, उनमें ही एक गुण होते हैं, संतोष एक गुण है। आर्टिफिशियली कोई संतोष क्रिएट नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो भक्ति से साधुओं की संगति से प्राप्त होगी। तो बामन भगवान ये सब बात कहने के बाद अपना कंक्लूजन कह रहे हैं कि महाराज मैं जानता हूं आप थोड़ा नाराज हो गए हैं, आपको मैंने इंसल्ट कर दिया, लेकिन आप मेरा परिस्थिति समझने का प्रयास कीजिए, मैं ब्राह्मण हूं करूं क्या। तो पूरा परपट दिए तीन चार श्लोक में कि असंतोष से क्या होता है। पूरा परपट देने के बाद कहते हैं कि मुझे अपना जो लक्ष्मण रेखा है उसे पार नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे आप हैं दानियों में शिरोमणि है, दानी शिरोमणि है, आप बहुत कुछ देना चाहते हैं। बामन भगवान का बलि महाराज पूजा किए थे, अतिथि सत्कार किए थे, और प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे पास आज तक ऐसा कोई नहीं आया है, खाली हाथ लौटना तो दूर की बात है, खाली हाथ तो कोई लौटा ही नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि हमारे घर पर आकर के और जाए और पुनः उसे किसी से और कुछ मांगने का जरूरत पड़े। अब तक से नहीं हुआ है, आप पहले व्यक्ति हो तीन पद मांगे। तो आप कुलोचित बात किए हैं, तो मैं भी कुलोचित बात करना चाहता हूं। ऐसा ही बात उन्होंने बामन भगवान जी बलि महाराज का इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि आप किस खानदान से हैं, आपके खानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ जो कुछ मांगा हो कोई न दिया हो, यहाँ तक वो युद्ध मांगा हो तो युद्ध भी दिया हुआ है, भगवान है और युद्ध किए हैं हिरण्यकश्यप महाराज से, सब जानते हैं, सब बात बता रहे हैं। तो आप कुलोचित काम किए हैं, हम भी कुलोचित काम करना चाहते हैं, और कुलोचित काम क्या है, ब्राह्मण के लिए संतोषी होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। तेज ब्राह्मण के तेज की पूजा होती है, तेजस्वी ब्राह्मण होते हैं। लाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्व बढ़ते, ब्राह्मणों का तेज बढ़ता है संतोष से। इसलिए है महाराज मैं भी असमर्थ हूं, इसलिए के बाद तस्मात्री प्रणाम एवं मतलब निसंदेह। इसलिए है महाराज निसंदेह, किंतु उन्होंने कहा था कि सोच लो, कोई शंका हो तुमने कहा था कि तुम सोच लो फिर से। बटो काम आप क्षमे सेकेंड टाइम दे रहे हैं, सोच लो, सोच करके बताओ। तो बामन भगवान सोच करके बता रहे हैं कि मैं सोच करके बता रहा हूं कि हे महाराज तस्मात् त्रिणी प्रदान एव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझेंगे
मैं कन्फर्म हूँ,
मैं कन्फर्म हूँ, कोई डाउट नहीं है, मुझे केवल तीन पद ही चाहिए,
मैं जानता हूँ
एवा दोनों के लिए आएगा, बलि महाराज के लिए भी आएगा और बामन देव भी आएगा।
बामन देव अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कन्फर्म हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काम चल रहा है, मैं और जोर नहीं पड़ेगी।
मानो यहाँ पर बलि जी ने कहा है कि तुम तो बालक है, तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या कह रहे हो,
तुम बालो बालिस्मती स्वार्थम प्रति अबदो यथा,
तुम्हें मालूम नहीं कि पहले शादी तुम बाद में शादी होते होगा, बाल बच्चे होंगे, तीन पद में क्या होगा,
बाद में सत्ता बढ़ी जाएगी,
बचपन में और सत्ता होती है बचपन का,
जवानी में जवानी का और बापे बुढ़ापा का अलग सत्ताएं बढ़ती बदलती होती है। तो मानो बलि महाराज कह रहे हैं कि सब सोच समझ करके बताना, तुम तो सोच समझ कर कह रहे हैं कि मैं सोच लिया हूं कि मेरे लिए केवल तीन पद ही उपयुक्त है, बस चलना चाहिए।
और बलि महाराज के लिए कहते हैं कि बरोबर सभा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप देने वाले में सर्व समर्थ हैं,
समर्थ ही नहीं है
आपके पास दिल भी है,
कितने पास पॉकेट है, पैसा है,
लेकिन कंजूस नंबर एक है,
देने का बात आएगा रे हमारे पास कहां रहना है,
बेचारे बहुत लोग आते रहते हैं किंबो किंबो उनके पास बहुत कुछ देने के लिए।
तो यहां पर बामन भगवान दोनों के लिए कहते हैं तस्मात् प्रदान एव,
इसलिए निसंदेह महाराज उनको तीन ही पहुंचाई और न चाहिए, मैं सोच लिया।
और बलि महाराज एव वृणे तद बरोबर सभा,
मैं जानता हूं आप निसंदेह
देने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, बल्कि
आप दे भी सकते हैं, आपकी इच्छा भी है देने की,
दिल भी है और पॉकेट भी है,
दोनों है एवं।
हमारा इतना सही काम चल जाएगा, एतावते सिद्धो हम वीतम यावत योजना, बामन भगवान हम लोगों के लिए शिक्षा देते हैं, अपने लिए तो कहते हैं एता एता होता एव सिद्धो हम, हमारा इतना से काम चल जाएगा और नहीं चाहिए। और हम लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, वीतम यावत योजना, व्यक्ति को उतना ही लेना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता, बस सबके लिए।
बलि महाराज जो कोई समान व्यक्ति नहीं थे, महाजन हैं बलि महाराज, प्रहलाद महाराज की पुत्र हैं,
वो समझ गए
कि जो बात पहले कहा था बालक, अभी जो बात कह रहा है, पहले का बात तो उनके कुल परंपरा का बात हुआ था ना जी, अब जो बात कहे हैं वो सार्वभौम बात कह रहे हैं, सभी लोगों के लिए बात कह रहे हैं, सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, जो सबके जीवन में काम आएगा उसके लिए। अब यह सब इतना सुंदर बात सुनने के बाद बलि महाराज बड़ी प्रसन्न हो गए, वाह क्या सुंदर बात
कहा, कन्विंसिंग बात कहा,
दिल में तो इच्छा हो ही गया था देने के लिए, लेकिन थोड़ा नाराजगी था बलि महाराज का, नाराजगी भी दूर हो गया। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलि महाराज प्रसन्न हो गए,
हसन, बलि महाराज हंसे
बामन भगवान का बात सुनकर,
बिल्कुल नाराज हो गए थे,
और नाराज होता था बात नहीं कर रहे थे, छोटा बालक है तुम्हारा बुद्धि इतना बड़ा बड़ा बात करता है,
भगवान देव जी वैसे ही गए
अशुच्याम सुचस्तम प्रज्ञा वाले बात बड़ा बड़ा करता है, मुख नंबर एक है बलि महाराज, जैसे डायरेक्टली नहीं कहे क्योंकि बामन में गुरु नहीं बनाए थे, होते थे तो वो बात नहीं कहे, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही कह दिए कि तू जो बात बड़ा बड़ा कर करके मुझे खरीद लिया, लेकिन बच्चा है इतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन इसी बच्चा का सैद्धांतिक बात सुन करके अब क्या है बावन भगवान ऐसा बोले तो बड़े महाराज बड़े खुश हुए और खुश होते आहा जैसी तुम्हारी इच्छा गिव अप कर दिए कहते वांछा प्रतिगृहता जैसी तुम्हारी इच्छा सो भी जो चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं और नहीं कह रहा है कि नहीं ठीक है तीन महीने छह पग ले लो 12 पग ले लो कम से कम पहले तो कह दिए कि तुम्हें जो चाहिए दूंगा राज चाहिए राज दूंगा सोने के मरे हुआ रथ दूंगा हाथी घोड़ा धन संपत्ति खाने का वस्तु अरे शादी करना है तो ब्राह्मणी कन्या भी दे दूंगा सब कुछ बिना मांगे ही दे रहे थे बिना मांगे और जब मांगे गुस्सा हो गया और तीन पर एक तो बिना मांगे इतने प्रसन्न थे मांगने पर नाराज हुए और अंत में प्रसन्न हुए तो जो शुरू में है जो अंत में है वही सही माना जाता है बीच वाला नहीं तो बीच में टेम्पोरली बलि महाराज गुस्सा में आ गए तो उसको नहीं लेना चाहिए उसमें असली बात यह है कि वामन भगवान का बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुए वांछा प्रतिगृहता अहम प्रतिगृहता मैं आपको जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही मैं उसे तुम ले लो वामनायाम महीन दातु जग्राह जलभाजनम और बलि महाराज यहाँ पर नोटरी नहीं बुलाए एक वकील नहीं बुलाए कि चलो भाई नोटराइज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं आजकल तो नाम बदल गया पहले वो संकल्प लेते थे किसी को चीज देने के लिए विवाह शादी में आज भी होता है कन्यादान बाप संकल्प मिलता है ब्रह्मचारी को मालूम नहीं बोले देखेंगे नहीं तो संकल्प लेता है तो बोलिए महाराज संकल्प ले रहे हैं कैसे जलभाजनम जगहा जलभाजनम जल का जो पात्र था उससे वे जल लिए फ्लास्क नहीं था उनको तो जल पात्र हमारा फ्लास्क नहीं पहले तेल नहीं था पहले कमंडली वाला जल पात्र था उसमें वो होता है ब्ला होता है वो क्या बोलते हैं उसको टोपी वाला कमंडली में टोपी होता है ना टोपीदार कमंडलू बलि महाराज के पास था और सब वहां से जल वामनायम महीन दातु तीन पग जमीन देने के लिए जग्राह जलभाजनम सुखदेव गोस्वामी विश्व में क्षमा दास्यंत उषणा असुर ईश्वरम जानन चिकित्सितम विष्णु शिष्यम राह विदाम्बर और गुरु जी वहीं पर थे शुक्राचार्य जी वो भी सुन रहे थे अपना गणित बैठा रहे थे कि इतना ऐसे जो बात कह रहा है कौन हो सकता है ना गणित बैठा रहे थे और जब गणित जोड़े तो गणित जोड़ने का मतलब थे विष्णु जैसे जैसे बात शुरू से कह रहे थे बामन भगवान शुक्राचार्य जब देखे कि बलि तो पागल हो गया इनके पीछे तो शंका उनको हो गया उस समय कुछ गड़बड़ हो गए और शुक्राचार्य परेशान उस समय से हो गए सब गणित लगाना शुरू किए थे अरे स्वाभाविक है कि छोटा बच्चा है ऐसा ऐसा बात कह रहा है जो पुरानिया लोग जानते होंगे कि तुम्हारे परदादा ये कर दिए तुम्हारे दादा ने ये किया उनसे ये हो गया उनसे ये हो गया वो बात कर रहा है हिस्ट्री कहां से पढ़ कर आया है सब गणित लगा रहे थे शुक्राचार्य जी और इतना सुंदर सिद्धांत शुक्राचार्य इसमें जो कभी सुने भी नहीं होंगे या सुने होंगे तो बताए नहीं होंगे या बताए होंगे तो बल्कि महाराज समझे नहीं होंगे जो भी है। और शुक्राचार्य समझ गए कि यह जिसको ये पृथ्वी देने जा रहा है बलि, शुक्राचार्य देख करके सुरेश्वरम बलि महाराज को जानते हैं यह विष्णु है और अपने शिष्य बलि को आगाह किए शुक्राचार्य जी। वो कैसे शुक्राचार्य आगाह कर रहे हैं, ये तुम्हारे सामने खड़ा है ये सौ बैरोचने हरिबो, क्या मैं बोल रहा था, ये सौ बैरोचने साक्षा बैरोचने सबसे दो तीन अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो अर्थ गुस्सा में, अरे विरोचन का बेटा, बलि महाराज को नाम नहीं लेना, विरोचन का बेटा, बाप का नाम लेना, हम लोगों को हमारे बाप का नाम लेते हैं, जो का नाम से बाप का नाम दे रहे गुरु जी थे तो बड़े विरोचन का बेटा है। तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है, अरे पता है कौन है जिसको तुम बामन समझते हो, अबोध समझते हो, बालक समझते हो, कहते हैं साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, बिल्कुल कंक्लूजन सत्य था शुक्राचार्य का, गणित पक्का लगाए थे, ये साक्षात भगवान है। भगवान मतलब षड ईश्वर परिपूर्ण, ये साक्षात वही है छह ईश्वर से परिपूर्ण, सब कुछ जानता है, यह विश्व है सबका भरण पोषण करने वाला है, सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है और ये अव्यय है। प्रश्न उठता है कि यह बात क्यों कह रहे हैं, ये तीन बात कहने के दो क्या है, भगवान है सर्व सामर्थ है विष्णु है सबका भरण पोषण करने वाला सबको अट्रैक्ट करने वाला और अव्यय है, इसलिए कह रहे हैं कि आगे वाला बात कहना है, इसलिए इसको इस आगे वाले बात को जोर देने के लिए पहले बात कहनी है। क्या कहते हैं, कश्यप अदिते जातो देवानाम कार्य साधक, एक कश्यप और अदिति के बेटे के रूप में आया है, तो मानो ठीक है, हाँ तब तो ठीक है, ये भगवान है आप कह रहे हैं, इनको नीचे की जरूरत नहीं है, ये सर्व सामर्थ है, सब कुछ इनके पास है, तो फिर हमसे क्यों तीन पद मांग रहे हैं, कहते हैं तीन पद अपने लिए नहीं मांग रहा, किसके मांग रहा है, देवान अलंकार साधक, देवताओं इसे अपने लिए नहीं चाहिए, ये भूल जाओ, देवताओं के लिए चाहिए। और बैरोचने शब्द का दूसरा अर्थ समझिए, करे तुम ही अपने बाप जैसे मुख मत बनो, देवचन का बेटा है, यही देवता लोग एक बार ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे और तुम्हारा बाप जानते हुए भी ये देवता लोग हैं अपना देह दे दिया, देह दे दिया, तुम ही मैं आगाह कर रहा हूं जानते हुए गलती मत करो, जान में अनजान मत बनो, पूरा परिचय खोल दिए। अब तो संकल्प हो गया है, बलि महाराज वचन दे चुके हैं, भगवान बामन लोग का काम हो गया, संकल्प लेने से पहले यदि एक कहीं बोल दिए हो तो कुछ गड़बड़ हो जाता, अब संकल्प हो गया है वचन दे चुके हैं, कोई प्रसन्न होकर के वचन दिए हैं, कहेंगे ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, झाप में जल लेकर के भगवान परमात्मा के रूप में शुक्राचार्य के दिल में भी है और बलि महाराज के दिल में, भगवान काम पक्का करने आए हैं, शुक्राचार्य को सिला दिए अभी आराम करो, संकल्प पूरा हो जाएगा तो अपना भाषण करना, उससे पहले शुक्राचार्य नहीं बोले, जब संकल्प हो गया पहुंच गया। अब शुक्राचार्य कितना भी फिर मारते रह गए, लेकिन बलि महाराज तस से मस नहीं हुए, यहाँ तक तुमको भी त्याग दिया जाओ तुम स्वाहा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, वचन दे चुका हूं। तो बात हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भेद खोल दिए, फिर कहते हैं प्रतिष्ठम त्वया अकस्मै यत अनर्थ अजानता, तू अनजान में गलती कर चुका है, तो अनजान में बहुत बड़ा गलती कर चुका है। अरे ऐसी चीज को ना साधु मन में दैत्या नाम, कोई भी असुर से उत्तम नहीं समझेगा, अच्छा काम नहीं किया है, असुरों के लिए बहुत विपत्ति ला दिए हो। दैत्या नाम अपने लिए नहीं, अपने लिए तो ठीक है, तुम राजा हो, असुर तुम्हारे ऊपर देख रहे हैं, महान अमय तुमने महान अशुभ कार्य किया है जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तब मानो बलि महाराज कह सकते हैं ठीक है, यदि देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं तो अपने रूप में नहीं आए, बामन के रूप में आए, तीन पर जमीनें मांग रहे हैं तो बड़ा बात क्या होगी, देव इनकी बहुत है, चलो देवता लोग उतने पुण्य का तकलीफ करके नहीं, तो नहीं जानता है, तीन पर से सब अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा ही अनर्थ नहीं हो जाएगा बल्कि पूरे अशुभ का अनर्थ हो जाएगा। अब उसका कमेंट दे रहे हैं, स्थान ऐश्वर्य श्रियम तेजो सुतम दास्यति आच्छिद्ध शक्राय माया माव हरि। यह हरि है, पहले तो तीन नाम बताए और भगवान विष्णु अव्य तीन गुण बताए, भगवान का नाम बताने के हरि भी है। हरि हर धातु से आया हुआ है, हर हरि ये भगवान का कृपा है जो शुक्राचार्य के मुख से भगवान बुलाते हैं। भगवान अपने भक्तों के दुख को हरण करते हैं, प्रपन्नार्ति हरो हरि, जो प्रपन्न होते हैं भगवान के शरण में होते हैं, भगवान उन लोगों के दुख को हरण करते हैं, प्रपन्नार्ति हरो हरि, भगवान एक साथ दुख हरो हरि हरण करते हैं, पहले चाहे सुख हो चाहे दुख हो दोनों को भगवान हरण करते हैं। जो दुख होता है उसको हर के रूप में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हर का काम है संहार करना, संघरति संहार करना, खत्म कर देना, तो हर के रूप में दुख को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हरि के रूप में सुख को लेकर के अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ताकि भगवत जो पीछे पीछे दौड़ते रहे, हनुमान जी भी इनका भी हर लिए देखो आराम से सो रहे हैं, क्या सुना ध्यान कर रहे थे पहले वाले। मैं हर और हरि का बात कर रहा था, भगवान भक्तों के दुख के हर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हरि के भक्तों के सुख को लेकर के हरि का ही दोनों काम है, हर और हरि दोनों साथ में रहेगा, तो दुख को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सुख को पॉकेट में लेते हैं, ताकि भक्त जब ये दौड़ते रहे भगवान को, सुख चाहिए ना भगवान पीछे दौड़ो, और उस सुख को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं भगवान असली सुख के रूप में, और वह असली सुख है जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय, कृष्ण का सेवा के रूप में शुभ अवसर दे देते हैं। भगवान का एक काम है जिस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सनै, उनके समस्त धन को दुख पांडित कर देते हैं। जो सुख जिसे जो धन जिसे वो सुखी होना चाहते हैं भगवान उसे छिपा लेते हैं। तो वही हरि है जो वामन का रूप धारण करके आया हुआ है। शक्राय किसके लिए आया हुआ है, लेकर के क्या करेगा, दे देगा। तुमसे छीन करके और दास्य से दे देगा किसको, शक्राय इंद्र को। तो अब तक से शुक्राचार्य अपना पत्र खोले हैं, अब आगे जो बात है। इतना कहने के बाद ही बलि महाराज पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, बलि महाराज चुपचाप सुन रहे हैं। तो भगवान पर ध्यान लगा लिए, अब संकल्प कर चुके हैं, अब कुछ बाकी नहीं रहा, कृष्ण काम से हो चुके हैं। तो एक तरह से शुक्राचार्य के बात उनको असर भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी असर नहीं कर पा रहा है। शुक्राचार्य बकवास कर रहे हैं। मैं तो सुना था कि शुक्राचार्य को बलि महाराज और दानवों की चिंता नहीं थी, उनको अपने रोटी के बड़ा मकान की चिंता थी। वो अपने लिए बड़े परेशान थे, हमारा क्या होगा। फिर भागवत में इसके बारे में इतने भी सुना हुआ सब, उनको चिंता था अपने लिए। तो यहाँ पर समराइज आज का जो श्लोक है, अब भगवान क्यों आए हैं, उनका आने का प्रयोजन क्या है और ये है कौन, तीनों परिचय सम्यक रूप से भगवान का परिचय इन श्लोकों में शुक्राचार्य दिए और ये क्या करेंगे। अब उसके बाद आगे कहते हैं कि जो तीन पद जमीन देने के लिए कह दिया है, अरे हम लोग कहीं का ये तो दो पद में ही सब कुछ ले लेगा, तो नहीं जानता इसको इतना बड़ा बड़ा काया इसका है, क्या क्या करेगा। तीसरा पद तो कहाँ दोगे, कहाँ रखवाओगे, और जो अपने दोस्त बाबू समझते हैं बड़ा समझते हैं, दो पद में लेगा तीसरा पद कहाँ रखाओगे। निष्ठा पे नरके मन में प्रतिष्ठतम तुम निश्चय ही नरक लोक को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे। तो सब जो श्लोक है प्रभुपाद जी छात्र पढ़ दिए हैं, तो श्लोकों का विवरण आगे व्याख्यान करेंगे बताएंगे। तो अब तक से भगवान का परिचय दे दिए और भगवान के आने का प्रयोजन क्या है श्लोकों में तीन चार चीज बताई गई है। एक तो यह कि जो भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाता है उससे ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह हमेशा सुखी रहता है, जो व्यक्ति संतोषी रहता है वही मुक्ति का पात्र होता है, और ब्राह्मणों के लिए संतोष उसके तेल में विधु के कारण है। असंतोषी को पूरा विश्व विजय कभी सुखी नहीं रह सकता, दुखी रहेगा। असंतोषी व्यक्ति जन्म असंतोष के चलते जन्म के चक्कर में संसद में पार रहेगा, और असंतोषी ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाएगा। इतना सुनकर बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े नाराज थे, और अब संकल्प ले लिए तीन पग जमीन देने के लिए। तब शुक्राचार्य जी वामन देव का परिचय दिए कि कौन है और किस प्रयोजन से आए हैं, तुम दे दोगे तो क्या होगा। प्रश्न क्वेश्चन और कमेंट
मुझे आपने जैसे बताया कि जो संतोष है वो एक गुण है, उसको आर्टिफिशियली हम नहीं ला सकते हैं। फिर आपने बताया कि उसको प्रैक्टिस के द्वारा हम कर सकते हैं कल्टीवेट, तो वो प्रैक्टिस और वो आर्टिफिशियली उसमें क्या अंतर है? मतलब
जब खाओगे तो धक्का रहेगा, बिना खाओ तो अच्छे तरह से फायदा नहीं होने वाला है। जब खाओ तब धक्का आएगा ना, तो संतोष जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा।
तो प्रैक्टिस किस चीज का प्रैक्टिस
वही तो कर रहे हो आप, हम वही कर रहे हैं, संतोष का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति जो है वो संतुष्टि देता है, भक्ति से भक्ति के भक्ति सामने सुन में जो गुण बताए गए हैं प्रथम अध्याय में ही, यह है कि सभी आनंदों को देने वाला है भक्ति। भक्ति से इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि बाहर की वस्तुओं के लिए हैंकरिंग रही नहीं जाएगा। रसवर्ज रसोदस्य परम विश्वास न थे, हाइएस्ट टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट, संसार का जो टेस्ट है लोअर टेस्ट है, असंतोष भी जो लोअर टेस्ट है। संतुष्टि व्यक्ति को चाहिए नहीं। इसके पिछले स्कंद में राम महाराज और भगवान दत्तात्रेय का जो अवधूत का जो व्याख्यान है उसका पढ़ना, कैसे वो पड़े हुए हैं मोटे ताजे एकदम, कोई चिंता नहीं। महाराज को होता है हम अजगर करी नचा करी पक्षी करे न काम, बाप ममू का कह गए सबके दादा। वैसे भी भगवान की इच्छा में क्या होता है, हम कितना भी हाथ पैर मारे क्या होने वाला है। आजकल तो लोग कहते हैं कि समय से पहले नहीं भाग्य से ज्यादा नहीं और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, संतोषी रहो ना, काहे टेंशन लेने का है। तुम आर्टिफिशियल मेच्योर होगा कृष्ण भक्ति करने से,
सबसे ज्यादा असंतुष्ट है जीवन भर उसी असंतुष्ट प्रवृत्ति से निपटने के लिए और उससे ऊपर निकलने के लिए संघर्ष करता है और अक्सर असफल होता है। लेकिन जो और योनि है जैसे पशु योनि, जानवर योनि, कीड़े मकोड़ों की योनि, वो सबसे ज्यादा संतुष्ट है। उनका जो दायरा फिक्स है, प्रकृति ने जो उनको स्वभाव के हिसाब से जो कार्यशैली के हिसाब से जो दायरा दिया है, वो कभी उससे बाहर कभी काम नहीं करते। और एक गाय का उदाहरण लीजिए कि उसको हम आधा पेट चारा दे दें, वो दिन भर हमको निहारती रहेगी कातर नजरों से, और वो कभी भी प्रयास नहीं करेगी, छटपटाएगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, खूंटा नहीं तोड़ेगी और मांगने के लिए। कुछ देर तक हमको कातर नजरों से करेगी, हम कुछ और नहीं मिला तो चुपचाप बैठ जाएगी। मैंने सबसे ज्यादा संतुष्ट जानवर योनि है, और उसके हम कहते हैं वो बद योनि है, जानवर योनि बद योनि है, मैंने वो एबल नहीं है मुक्ति के। और हम जो सबसे ज्यादा असंतुष्ट, सबसे ज्यादा काइया, सबसे ज्यादा कर्मी, सबसे ज्यादा गिरे हुए योनि से अगर कहता है मनुष्य योनि है जो कभी संतुष्ट होता ही नहीं।
तो प्रश्न क्या है,
प्रश्न यह है कि संतुष्टि अगर मुक्ति का असली मार्ग है तो मनुष्य योनि को निरय क्यों माना जाता है मुक्ति को, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा असंतुष्ट है, पशु योनि को क्यों निरय नहीं माना जाता?
मनुष्य जब हम जन्म लिए थे क्या असंतुष्ट थे? डिपेंड करता है वहीं से हमारा अपब्रिंगिंग क्या है। आज का जो संसार है, आज का जो समय परिस्थिति है, सब जगह असंतोष का नंगा नृत्य चल रहा है। और हम लोग उसी में पड़े हुए हैं। शास्त्र कहता है कि संतोष से मुक्ति होती है, ये जितने असंतोषी हैं उनको मुक्ति पता भी नहीं है, उनको चिंता मुक्ति का उन्हें चिंता नहीं है। इसलिए आपको हमको हम लोगों पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह बात लोगों को बताने के लिए जाकर के वहां प्रचार करें कि भाई असंतोष से कोई सुखी नहीं हो सकता है, सुखी होगा तो संतोष से। ये बात बताने के लिए आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली कैसे संतोष मिलेगा, कृष्ण दास संस्था प्रैक्टिस करके गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भक्तों का समझ लीजिए, नाम जप लीजिए। हमने देखा है इस काम में भी, और अगर हमारा कुंडल संतोषी व्यक्ति हूं हमको देखो मैं असंतोषी हूं, सच बात है। हम लोग एक जगह के हैं, एक साथ में ज्वाइन किए, एक साथ में हुआ सब कुछ, लेकिन अंतर यही बात के दो बच्चे हम लोग एक संतोषी होगा, एक असंतोषी होगा। तो इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है, जो जितना मात्रा में संतुष्ट रहेगा तो उतना मात्रा में ही मुक्ति की उम्मीद है।
संतुष्टि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, जैसे कि हमने 26 नंबर श्लोक में आपने बोला कि ब्राह्मण अगर संतुष्ट रहता है तो उसका तेज बढ़ता है, पर क्षत्रिय और व्यापारी वर्ग जो है वो संतुष्ट होगा तो उसका खत्म हो जाता है, उसको संतुष्ट नहीं होना है।
नहीं, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं,
और आपका भी मैं उदाहरण देता हूँ, आपका भी अभी आपने अपने बारे में बोला कि हम असंतुष्ट है। 30 साल पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है इस कॉन में, जिसमें आप पंडिताई करते हुए दिखाए गए हैं निकाय प्रभु के शादी में। अगर आप उस अपने सदगुरु को, कि हम बहुत अच्छा पंडिताई कर लेते हैं, उस समय 30 साल पहले उसी को सदगुरु मान लेते हो, संतुष्ट हो जाता, आप पंडिताई कर रहे होते, यहाँ नहीं बैठे होते। इसलिए संतुष्टि भी हर लेवल लागू नहीं होती।
मुझे एक संतुष्टि शब्द को समझने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों को भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए, भक्ति के लिए असंतोषी बने रहो, संसारिक विषय वस्तु के लिए नहीं। तो संसारिक विषय वस्तु के लिए बात हो रहा है। ओके,
दुखालय में शासन बोला गया है, तो दुखालय में शासन जब दुख यहाँ है तो सुख क्या शुरू करना है, जब बोला गया है दुखालय में शासन आप बोला सुखी हो जाएंगे हरी ईर्षा करने से, तो यहाँ दुखी है ही,
अंधकार में प्रकाश लाया जा सकता है। रात में दीपक जलाते हैं ना, अंधकार में प्रकाश लाया जा सकता है, प्रकाश में अंधकार नहीं। तो दुखालय होने के बाद भी इसको सुखालय बना सकते हो, कैसे? टास्क बहुत टफ है, वह है कृष्ण कांस कृष्णा क्या केवल आनंद कंद, कृष्ण भक्ति क्या है केवल आनंद का ही विषय है, नाचना आनंद है, गाना आनंद है, प्रसाद खाना आनंद है। यहाँ जो संसार का सुख है वो सुख नहीं है, वो तो दुख से निवृत्ति को भी सुख मानते हैं, सुख जानते ही नहीं है। सुख प्राप्त करने के पहले शांति चाहिए, जो शांति को प्राप्त किया वो सुखी हो सकता है, और शांति प्राप्त करने का तरीका भगवद गीता में बताया गया है। शांति प्राप्त विहाय काम सर्वान गुमा सर्वतन स्वयान मौन निरंकारम स्वामी शांति मुक्तारम तपसम सर्वलोक महेश्वरम श्रीम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति क्षति, ये सब मापदंड है। पहले शांति प्राप्त करो, आज पहले पॉलिटिशियन को सबको सुखी करना है, सर्वभवन सुखनो, अभी कहते हैं विश्व शांति चाहिए, शांति जग कराओ, अभी समझ रहे हैं कि शांति किससे मिलेगा, लेकिन तरीका गलत करना है। इसलिए आज जरूरत है जाकर के हम लोग हरिनाम दें, लोगों ने नेचुरल वे ऑफ लिविंग बताएं, भगवद गीता का वितरण करें, लोग पढ़ें, शांति मिलेगी, शांति में सुख मिलेगी। यस
हरे कृष्ण बोल जी, एक श्लोक में बताए भक्ति परिशान भगवत विरोध, उस श्लोक में कहा गया कि जो भक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न होता है तो वो बाह्य वस्तु के प्रति उसका बैया कहा जाता है, और भक्ति का विस्तार लिखते हैं कि इसमें तुष्टि तुष्टि और खिदा, जो भक्ति में हमें खिदा लोग बढ़ना चाहिए, लेकिन हम जैसे मंदिर में रहते हैं, मंदिर में हमारा या भगवान के कार्य के प्रति, तो मंदिर से हमारा कल्याण है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में रह के होश पोजिशन के लिए अगर लोभी हो जाए तो उसके लिए कितना से सही होगा।
भक्ति करने से व्यक्ति होती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग का दो अर्थ है, विशेष राग इति वैराग, विरत राग इति वैराग। संसारिक वस्तुओं से राग खत्म हो जाता है और भगवान में राग बढ़ जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोगता जनतासु वैराग्यम ज्ञानम चाहते। तो ये तो ठीक है, आपने वो तुष्टि पुष्टि वाला भी बताया, वो भी ठीक है, भक्ति करने से प्राप्त होता है। लेकिन यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये भी आता है, लेकिन महाप्रभु उप शिक्षा में कहते हैं जो सुख उपशाखा उपशाखाएं हैं। जैसे जब खेती करते हैं तो पानी डालते हैं, आलू का खेती किया, पानी में डालोगे तो मोथा आ जाएगा, तो मोथा को हटाना पड़ेगा। तो उपशाखाएं हैं, नाम लाभ पूजा प्रतिष्ठा नेम फेम गोरी बड़ा पुष्पाना, ये सब यदि कामना है, यदि कामना है तो प्रतिष्ठा है। हो सकता है कि बिल्कुल वो भी कामना, ऐसा बात नहीं, कम हम लोग जन्म जन्म आते से कामना नहीं जीते आ रहे हैं, थोड़े 10 साल भोजन करने से हो जाएगा, समय लगेगा, ये जन्म बहुत दिन का लगा हुआ है, पहले से कम तो कुछ हुआ है ना। और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए सबके लिए, भलाई का सोच, भगवान से प्रार्थना करने अच्छा वक्त है, लेकिन भगवान से थोड़ी कामना है, कृपा करके इसे कामना को थोड़ा दूर कीजिए और उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे वो भक्त अच्छा बन सकता है। लेकिन उसमें हैम्पर करते रह गए तो कैसा भक्ति करता है, कोई कामना के लिए ये चाहिए तो ये चाहिए, तो उसको प्रेस्टीज इसे बना देगा, फिर उसे भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमें चाहिए यहाँ पर जो आश्रम में है, हमारा धर्म है सबको हेल्प करना है, दूसरे कामना सम्मी है, अंतर इतना ही है, वो बाहर को अधिकता को अंदर छिपा कर रखा है, जो बाहर को अधिकता बिल्कुल अच्छा है और अंदर छिपा कर रखता है। मिथ्याचार सोचते मास में बड़ा भी दिखाता है, हमें बहुत कामना है तो मिथ्याचारी है। तो कामना तो है हम लोगों में, कामना इतना जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक संशुद्ध भक्त बन न जाए। मैं अपने क्लेम नहीं करता हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, जो भी शुद्ध भक्त बनेगा मैं अपने आप बन जाएगी, नापना नहीं पड़ेगा, अगर खाते हैं तो नापने कितना पेट भरा है, तो कामना अपने आप खत्म हो जाएगी। शुद्ध भक्ति करना चाहिए, ये कहीं कामना हो, जमा जमा नाही मांगी कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति दिया कृष्ण बड़ी कृपा करी, एकमात्र ही इच्छा है शुद्ध भक्ति मिले। प्रश्न उसके पास पहले था, बहुत बहुत हाथ लाया है, बोलो दोस्त बोलो, आगे आ जाओ। हनुमान जी का कमेंट होगा, मैं जानता हूँ, प्रश्न है अभी फर्स्ट टाइम।
हरे कृष्ण बोल जी,
कृष्ण भक्त निष्काम।
यस,
अन्याभिलाषिता शून्या ज्ञान कर्मात् अनावृता अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो उत्तमा भक्ति के रास्ते पर चल गया है, उत्तम भक्त बन गया है, वह निष्काम है, उसमें कोई कामना नहीं है, उसे अपने लिए कुछ अभिलाषा नहीं है, सब कुछ को कृष्ण का कृपा समझता है। अन्याभिलाषिता शून्य, शून्य मतलब जीरो, कुछ भी अभिलाषा नहीं है, शुद्ध भक्त बन जाओ। नहीं, हनुमान जी के बात वाले हैं, बाद में शुद्ध भक्त बनकर भी निष्काम हो सकते हैं। बहुत शुद्ध भक्त है, निष्काम है, हम उनका फॉलो करेंगे, जितना मात्रा हम फॉलो करेंगे उतना मात्रा निष्काम रहेंगे। अरे औरतों से लहसुन प्याज मछली खाने का मन नहीं कर रहा है ना, इतना मात्रा निष्काम हो गया ना, पहले कामना खत्म होता है तो किसी घर मछली बना जी को पाया जाता है, अभी नहीं होता ना, लहसुन प्याज बंद रहा तो जी को पाया जाता है, अभी नहीं बनता है ना, तो बन जाता है ना, बंद कर लेते हैं निष्काम तो कुछ बना बच्चे
प्रभुदेव। आप बताएं कि भगवान जिस पर विशेष अनुग्रह करते हैं, जैसे अनुग्रह में हरि से धर्म सुने, तब ऐसा अनुग्रह कौन चाहेगा?
ऐसा
भगवान बोलते हैं यश्या अनुग्रह में हरि से धर्म सुने, जब मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो उसका धन आवरण करता हूँ, तब ऐसा जो कृपा है वो कौन चाहता है?
यदि किसी को हार्ट का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर पहले ऑपरेशन करने अपने हार्ट को काटेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, आप लोग तब ऐसा ऑपरेशन कौन चाहेगा? ऐसा कौन है तो बेटो भी करो। अब डॉक्टर का काम है कि इन छह से अधिक करके ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो मर जाओगे, तो नहीं तो भगवान का काम है, भगवान जब देते भी हैं तो भक्तों को देते हैं, क्या देते हैं? सहन करने का, देखने का, उसका आउटपुट भक्तों बदल जाता है। जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो भक्त हिल गया, बाद में अरे मैं इतना भजन किया ऐसा हो गया, क्या भजन कर सकता है, कौन भजन करेगा? तो भगवान का अनुग्रह हुआ, और जो अनुग्रह से मिल रहा है, अरे आज तो मैं मरने वाला था लेकिन भगवान के हाथ से बचा लिया, उस समय नहीं काफी है। तो ऋषि महाराज क्या समझते हैं अनुग्रह है भगवान का, बड़े महाराज समझ रहे हैं भगवान का अनुग्रह हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, तो यह बात वो समझना ही भगवान हमारे भलाई के लिए करते हैं अनुग्रह है। बस जो भी दुख होता है हम लोगों को और हम समझे कि भगवान हमारे प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, यही भगवान का इनिशिया है, यही भगवान का अनुग्रह है। अब इसे हम लोग भगवान का ग्रह देते हैं, अब हरा अपना अनुग्रह है, इसको समय भगवान ग्राहक व्यवस्था किए हैं, वही अनुग्रह है।
जी बहुत साल पहले आपने मैं बोला था क्लास में कि राजा को संतों से नहीं होना चाहिए, लेकिन साम्राज्य बढ़ेगा जी, प्रजा सुखी भी रहेगा, सो मुझे भी याद आया आप संतों से हो जाएंगे तो नया मंदिर भी बनेगा, फार्म हाउस वगैरह काम कैसे चलेगा?
और कृष्ण भक्ति के लिए संतोषी मत बनो, अपने लिए संतोषी बनो,
अपने लिए
कृष्ण के लिए नहीं अपने लिए।
और एक छोटा सा आपने बोला कि ब्राह्मण का तेज बढ़ता है संतोष से, क्षत्रिय का बल से, शूद्र का धन से, सॉरी वैश्य का धन से और शूद्र का
सेवा करने से,
सेवा करने से। धन्यवाद मुझे हरे कृष्ण।
श्री प्रभुपाद की जय, बलि महाराज की जय, ब्राह्मण भगवान की जय।